ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम किस लिए जन्म रहे हैं, फिर मृत्यु क्यों हो रही है। मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ये जानकारी सत्संग से होती है। और सतगुरु ही सत्संग किया करते हैं, परम संत होते हैं वही सत्संग करते हैं, उन्हीं के पास सत्संग होता है। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है और वो सत्संग करते हैं, वो सत्संग के नाम से अज्ञान जनता में बांट रहे होते हैं। प्रथम तो मानुष जीवन मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी के अंदर परमात्मा पाने की तड़प होना बड़ी मुश्किल है, और परमात्मा पाने की तड़प में जो प्राणी होते हैं उनको संत मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया है, लेकिन संत मिलना उससे भी दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। और फिर क्या बताते हैं, ज्ञानी कोटि अनंत है, वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत है, बिरले साधु संत। आज का जो समागम है, जो 27 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, आज इस परमात्मा की अमरवाणी को भोग पड़ा है। और ये किस उपलक्ष्य में ये समागम हुआ है, ये वो अनमोल दिवस है, ज्येष्ठ फाल्गुन की अमावस्या, 17 फरवरी 1988 को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी, दीक्षा की भीख मिली थी मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी से। अब हम इस अमावस्या को ही मनाते हैं क्योंकि हमारे अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो इन्हीं तिथियों पर आधारित हैं। जैसे परमेश्वर का प्रकट दिवस ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को होता है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का बोध दिवस इसी फाल्गुन मास की द्वादशी को होता है, तो इस कारण से हम 17 फरवरी की बजाय इन आमदेशी अपने महीनों और तिथियों के आधार से इस शुभ दिन को मना रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, वो दिन याद रहता है, ये शरीर छूट जाएगा पर वो दिन भूला नहीं जा सकता। जिस दिन इस दास को ये भीख मिली थी नाम की, और जिसके बाद जीवन पलट गया, इस जीने के उद्देश्य लक्ष्य का हमें पता लगा। इससे पहले हम खूब इंटेलिजेंट माने थे अपने आप को और बहुत ही ये सोच बैठे थे कि पता नहीं के बना दूंगा, अच्छे प्लाट खरीदूंगा, कोठी बनाऊंगा, बढ़िया कार लूंगा। इससे आगे हमारी बुद्धि काम में नहीं करे थी, बाकी माया बचे थी तो अपनी बकवादों में खर्च करें थे। अब जब से ये ज्ञान हुआ है भगवान का तो पता चला है वो तेरा गजब हो परमात्मा, मनुष्य जीवन से जो काम करना था वो तो शुरू भी नहीं किया मैंने, ये तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम कर रहे थे। तो सत्संग से ज्ञान से पता चला, फिर उस नाम की कमाई डट कर करी। हम सुना करते थे परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है, तो हमें वो सुख बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। स्वाभाविक जो हमारे संस्कार ही फल रहे थे उनमें कोई खुशी का कोई कार्य हमारा सिद्ध हो जाता था तो हम मान लेते थे भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, बाबा श्याम जी ने और हनुमान जी ने कर दिया। लेकिन वो कोई ऐसा हटकर नहीं हो रहा था जिसको जैसे अब हम महसूस कर रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। वो जो क्रियाएं हमारे जीवन में घटती हैं, घटनाएं, उनसे पता चलता है कि अब भगवान हमारे संग है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता है और सत्संग संत करते हैं, और संत का मिलना बहुत कठिन है। एक समय पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है और इस अध्यात्म सत्संग के माध्यम से दास बहुत बार आपको बता चुका है कि यहां दो पावर काम करती है, दो शक्तियां, एक ब्रह्म जिसको सर्वपुरुष भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त जिसको शब्द स्वरूप भी राम कहो या पूर्ण परमात्मा कहो, उनका शुभ नाम है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान। और वो कबीर भगवान, अभी तक हम ये सोचा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि हम बालक को इतना ज्ञान होता तो फिर उसको टीचरों की क्या आवश्यकता थी। यदि विद्यार्थी स्वयं इतना निर्णय ले ले तो टीचर की क्या आवश्यकता थी। तो टीचर की आवश्यकता इसलिए थी कि वो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझे और फिर हमें समझावे। तो जैसे सुना करते थे कि परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है और परमात्मा निराकार है। अब कोई ये कहे कि सूर्य निराकार है और उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, तो ब्लाइंड मैन की थ्योरी है, या ब्लाइंड मैन अंधे की, आंखों वाला नहीं कह सकता ये बात। जिस प्रकाश को आप देख रहे हो कि झांकी खिड़की में के अंदर आया कमरे में, तो वो प्रकाश किसका है? सूर्य का। तो सूर्य कैसा है? निराकार। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, झूठ है। इसी प्रकार परमात्मा का जो लोक है सतलोक, वो भी स्वप्रकाशित है और परमात्मा भी सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है, सह शरीर है, और उनके एक रोम में, रोम कहते बाल को, एक रोम में इतनी चमक है, बाकी शरीर में तो और गणी, एक बाल ही इतना चमक रहा है। करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, वो रोशनी भी फीकी पड़े। तो उसी प्रकाश का रिफ्लेक्शन इन ब्रह्मांडों के अंदर है, और वो कैसे है? जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और सूर्य का प्रकाश तालाब के जल में से रिफ्लेक्शन होकर प्रतिबिंब बनकर और कमरे की झांकियों में से और कमरे में दिखाई दे रहा हो, तो वहां जो प्रकाश है, कोई ये कहे कि ये प्रकाश है और सूर्य, ये प्रकाश किसका है? सूर्य का। और सूर्य कैसा है? कि निराकार। तो ये बात अब नहीं जचती। पहले तो हमने सारी ये ठीक लगे थी, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई फुटरोल नहीं था जिसका हम नाप लें इस ज्ञान को। अब हमारे पास ISI मार्क का टेप हो गया। अब एक सेकंड में फीता रख देते हैं कि ना ये भी छोटा है, ये पूर्ण नहीं है। ये हमारे पास वो ऐसा ज्ञान मिल गया। तो ये ऋषि महर्षियों ने जो डले डोए समाधि लगा लगा के, अब तो ये पंथ जो ज्यादातर चतुर बन रहे हैं, वो कहते हैं ढाई घंटे सुबह बैठो, ढाई घंटे शाम को, और अंदर प्रकाश देखो। इसको तो हजारों वर्ष करके ऋषि थक लिए और जख मार के आखिर में उन्होंने ये कह दिया परमात्मा निराकार है। और जय इन पंथों के, जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यही वाले योगेश्वर पंथ, अंसादेश पंथ, ये सब क्या कहते हैं कि प्रकाश देखो, प्रकाश देखो। अगर तुम्हारे गुरुओं से लेकर आज तक यही थ्योरी है परमात्मा निराकार है और केवल प्रकाश देखा जाता है, तो वो कहां गए होंगे, कितने पहुंचे थे वो, उनके साथ कैसे बनती रही। इनको तो कुछ भी ना दिखता जो यहां अब जो डले ढो रहे हैं, ये तो उसे स्वाभाविक आंख बंद करके दबा लो तो कुछ तो चमक दिखेगी, कोई लाल दिखेगा, कभी पीला, फिर वो सफेद भी हो जाएगा। ये वो प्रकाश नहीं है, परमात्मा का वाला प्रकाश भी इनसे हटकर दिखेगा। अब जैसे ऋषियों ने साधनाएं की, समाधिस्थ होकर के अपने इस कक्ष में, इस शरीर रूपी महल में, उस परमात्मा के रिफ्लेक्शन को देखा जो ब्रह्मांडों में टकरा करके इस बॉडी रूपी कमरे में, कक्ष में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकाश को देखकर बाकी इसमें कुछ दिखना ही नहीं था, क्योंकि सूर्य तो बाहर है और वो देख रहा कमरे में बैठा। तो उसने यही थ्योरी मान ली कि ये जो झांकी में दिखा खिड़की में प्रकाश दिखा, ये प्रकाश यही है सूर्य, और यही प्रकाश यही उसका साक्षात्कार है सूर्य का। तो यह भूल थी इनकी, सूर्य तो दूर है, अलग है, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम उससे बाहर जा नहीं सकते। तो वही व्यक्ति ऐसी थ्योरी और सिद्धांत बताते रहे कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा क्या केवल प्रकाश देखा जाता है। तो पुण्यात्मा उस परमात्मा ने स्वयं, तो इस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वही तत्व ज्ञान बताते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, इस बात को प्रत्येक प्राणी मानता है, मानव शरीरधारी, विशेषकर जो हिंदू धर्म के अंदर जन्मे हैं पुण्यात्माएं, ये तो ड्योट है उसके ऊपर, वेदों के ऊपर पूरे समर्पित है कि वेदों में जो लिखा है वो भगवान की सत्य महिमा है। उसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवद गीता को भी वेदों से कम ज्ञान युक्त नहीं मानते रहे, ये बिल्कुल सही है। ये दो ऐसे सदग्रंथ हैं जो परमात्मा का स्वयं दिया हुआ ज्ञान और विधान है। इससे हटकर जितने उपनिषद हैं, पुराण हैं, जो इनसे वेदों और गीता से हटकर जो बोध हैं, वो किसी ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं, उसका अपना अनुभव है। जैसे मांडुक के उपनिषद है, मांडुक नाम के एक ऋषि ने जैसा वेदों को समझा जाना, फिर जैसा उसने अपना अभ्यास किया, उस अभ्यास का उसने सारा कुछ प्रक्रिया लिख दी कि ऐसी साधना करो उससे ये उपलब्धि होगी। तो वो मांडुक के ऋषि का अनुभव है, यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार 18 पुराण जो हैं, ये श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान शुरू हुआ पुराणों का, उससे अन्य ऋषियों ने सुना, तो उन ऋषियों ने उस एक पुराण के ज्ञान के 18 भाग कर दिए। कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, ब्रह्मा जी ने जैसा वेदों को जाना समझा उसने वो बता दिया, उसके बाद जो बाकी की कथा कहानियां उसने उस वो ऐसे दो ऋषियों की वार्ता लिख दी किसी पुराण में, किसी अध्याय में। तो ऐसे इसको 18 भागों में विभाजित कर दिया, ये 18 पुराण बन गए। इनमें जो ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता, विशेषकर साधना का, बाकी तो पुराण गलत नहीं है, पुराणों का ज्ञान कोई गपौड़ नहीं है। गपौड़ यानी गलत तो उनको लगता है जिनको जातम ज्ञान नहीं, और जो परमात्मा की लीलाओं से परिचित नहीं। पुराणों में कथा है कि एक अगस्त नाम के ऋषि ने सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, सागर कभी खाली हो गए थे समुद्र। तो इसको आम आदमी, विशेषकर आज का जो एजुकेटेड तबका अपने आप ने घना इंटेलिजेंट माने है, यो तक कद्दे भी ना माने, और यह बिजली पड़ ली थी आज तक 200 वर्ष पहले, ऐसे कर्महीन ऋषि मैं ऋषि पैदा हो गए थे जो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, उनमें से एक है यू मैं ऋषि दयानंद। इसने कहा कि वेद गपौड़ है, ये सब गपास्टिक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और स्वयं लिख रहा है सातवें समोल्लास में, आठवें समोल्लास में स्वयं लिख रहा है कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे पृथ्वी की तरह सारे पशु पक्षी हैं, बाग बगीचे काजू किस्मत सेब है। तो पुण्यात्माओं, ये सारे भ्रमित लोग थे। ये तो था कति गपौड़ के सूर्य पाद में रहते हैं, और अगस्त ऋषि ने जो समुद्र पी लिए थे, ये आध्यात्मिक मार्ग की एक बहुत बड़ी, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जो है ये प्रमाण बनता है कि परमात्मा जब एक भगवान का भगत है और इतनी अजब लीला कर सकता तो वो मालिक क्या नहीं कर सकता। वो तो भगत था, भक्ति करके उसने ये चमत्कार दिखा दिया। तो कहने का भाव ये है कि इसमें पुराणों में जो लिखा है वो सत्य है, और सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो कंप्लीट असत्य है। वो सत्यार्थ प्रकाश क्या था, ये कुछ दिनों में उपनिषद का स्थान ले लेता और लोगों की के अंदर इसकी इतनी गजब की धाक बन गई थी कि बड़े मैं ऋषि दयानंद बड़े महापुरुष थे और इन्होंने जो भी वेदों को जाना आज तक किसी ने नहीं समझा, और उन्होंने वेदों का सारांश सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। तो लोग कुछ दिनों के बाद श्रद्धालु वेदों को भूल जाते, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर रख लिया था। ये कंप्लीट झूठ है, पुराण झूठ नहीं है, लेकिन पुराणों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, उसमें भक्ति विधि नहीं है। तो भक्ति विधि नहीं है तो फिर दादे परदादों की कथा है वो पढ़े जाओ, जैसे विष्णु पुराण में पढ़ ले, श्री राम की रामायण में देख ले, ब्रह्मा से फलाना पैदा हुआ, उसे दक्ष से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर रामचंद्र पैदा हुआ, रामचंद्र का फलाना हुआ, ये है इन पुराणों में। ये झूठ नहीं है लेकिन हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है वो सूक्ष्म वेद जिसमें परमात्मा ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है, वो सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, और उसके अंदर कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड है। वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है और जो भक्ति की विधि है वो इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है, और पुराणों के अंदर भक्ति की विधि टोटली गलत है। वैसे पुराण गलत नहीं, पुराणों की कथा गलत नहीं, यहां इस अध्यात्म ज्ञान का जो टोटा हो गया, घाटा हो गया, न्यूनता आई है, इसका कारण यह रहा है कि यहां दो पावर हैं, एक सरपुरुष एक परम अक्षर पुरुष। वैसे तो तीन पुरुष हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में। एक सरपुरुष, ये तो वो प्रभु है, पुरुष माने परमात्मा, प्रभु ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी भगवान होता है, प्रभु होता है, स्वामी होता है। एक सरपुरुष यानी नाशवान, ये ब्रह्म है, और एक अक्षर पुरुष, इससे कुछ ज्यादा सथाई है। सरपुरुष के केवल 21 ब्रह्मांड है, बट 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे ये सात नीचे के लोक और फिर ये पृथ्वी लोक, धर्मराय का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और कॉमन स्वर्ग नरक, 88,000 खेड़े, सपतपुरी, ब्रह्मलोक, ये इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल भगवान के सरपुरुष के, और अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे, और उस परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड असंख्य, वो सबका मालिक है, सबके ऊपर वो वासुदेव है, वो सबका धारण पोषण करने वाला ओवरऑल कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। और उसका नाम कबीर देव है। असंग ब्रह्मांड का मालिक है तो वो परम अक्षर पुरुष है। यहां पर दो पावर काम करती हैं, क्योंकि हम इस सर्पुरुष के लोक में फंसे पड़े हैं। ये कैद है एक काल कसाई की, और ये हमें ऐसे रोक रहा है जैसे कसाई बकरे पालता है। जिस दिन आपके या बात समझ में आ जाएगी, जो दास बार बार कह रहा है ये मेरी कथा नहीं है, ये रामपाल की मेड, रामपाल मेड नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा कबीर गिवन ज्ञान है, ये किसी डूम भाट का गीत नहीं है, ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन आपके या कद सत समझ में आएगी उसके बाद आप भक्ति पर दृढ़ हो गए। अब आप इस दास के नाद पुत्र पुत्री हो, नाद माने वचन के, आप इस दास के जो अनुयायी हो गए, वचन के बेटा और बेटी हो गए। और कोई तो आज ही जन्म ले रहा है, यानी आज जिसने मंत्र लिया है, और किसी ने कल लिया, किसी ने परसों लिया, किसी ने महीने पहले, किसी ने 1 वर्ष पहले, और किसी ने 2 वर्ष पहले, किसी ने 10 वर्ष पहले। तो जिस दिन आपने दीक्षा ली उस दिन आपका मनुष्य जन्म माना जाता है। उससे पहले शरीर मनुष्य का जरूर था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। तो जैसे जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से आपकी आयु गिनी जाती है इस अध्यात्म मार्ग में। तो आप कोई 2 वर्ष का है, कोई 6 महीने का बालक है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती है। अब जैसे पिताजी बैठा है और छोटा बालक बेटा या बेटी आकर एक पेन उठाकर कहती है, या बच्चा कहता है कि पिताजी ये क्या है, पिताजी कहता पेन है, क्या है, पेन है, ए पेन है, वो कहता ए पेन है, ए पेन है, तो पिताजी पेन कह रहा है, वो ए कह रहा है, उसको रख कर और खेल लग जाता है। अब उसका कारण ये है कि वो बच्चा ये भी नहीं मान रहा पिताजी जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि इसको कैच करने जोगी हुई नहीं है कि यो पेन क्या न कह रहा है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी कहता बेटा या बेटी वो पेन ले, उठा के भाग जाता है, उठा के लाता है। तो अभी आपकी ए नहीं मिटी है कुछ एक की, जब ए मिट जाएगी ना, जब एक एक शब्द आपके हृदय में बैठेगा इस दास का, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो गए, आप ये तो मान नहीं सकते कि गुरुजी गलत कह रहे होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि ना कैच कर रही तो धीरे धीरे इस ज्ञान से आपकी बुद्धि इतनी ओपन हो जाएगी कि आप फिर संकेत समझा करोगे। तो उसी के लिए सत्संग किए जाते हैं, ये ज्ञान सुनाए जाते हैं, ये कथा सुनाई जाती है। तो यहां हम काल के लोक में फंसके हैं, इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना होता है, इसका श्राप लग रहा है यहां के भगवान को, काल को। और ये गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। कृष्ण के अंदर बोला, और कृष्ण तो बाहर खड़ा, वो नो कह, मैं तो ऐसे ही, मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो ये गुप्त रहता है, गुप्त क्यों रहता भी पिता बच्चों से, उसमें कोई दोष है, इसमें दोष है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश को यह पता लग जाए कि वो कसाई है, बाप हो चाहे कोई भी हो, ऐसे खाता है, एक भी ना करे इस काम ने, रात भी बैठ जा समाधि ला के, इनको भी मिसगाइड रखता है, इनको भनक भी नहीं पड़न देता कि ये हो क्या रहा है। ये तो समर्थ आए परमात्मा, इसकी पोल खोली। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठर अग्नि प्रतपाल। और खुद भगवान कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। और फिर वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए, हाँ ये दो यहां पर पावर हैं, दो भगवान दो प्रभु हमारे इस अध्यात्म मार्ग में दो मुख्य रूप में पात्र हैं। ये सरपुरुष का तो रोल है खलनायक का, इस काल का ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का, इसका तो काम है खलनायक का, इसने तो सारे उल्टे काम हमसे कराने हैं और अपने काबू में रखना है। हम शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, भुक्की खाते हैं, वो कब बना लिया या तोब कैसे सेट करके, ये कोई भी काम मनुष्य जीवन का नहीं है, मनुष्य का ये कर्म नहीं है। और ये हमने कति टोटली ग्रहण कर लिया, को थोड़े बहुत बच रहे होंगे स्वाभाविक, कोई पिछले संस्कार वश। उसके बाद ये क्या करवाता है, आत्मा तो भगवान बिना रह नहीं सकती, क्योंकि ये सुख छोड़कारी है, ये तो उस सुख को छोड़ के आई है, इसके वो रह रहकर याद आ रहा है। तो यहां इसने उस सुख की प्राप्ति के लिए सोचा, निर्धन सोच लेता है कि धनवान सुखी होगा, धनवान को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता, या तो माया तो आग है, और आग में शीतलता कोई कहे और खुद जाए तो दोनों बालक है। फिर धनी सोचता है कि राजा लोग सुखी होते हैं, ये कभी भी रेड लगा देते हैं, हमारा टैक्स चेक कर लेते हैं, बड़े ये प्रभावशाली हैं, राजा को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता, स्वप्न में भी। एक छोटे से परिवार का मुखिया उनके लालन पालन पालन में कितना टेंशन ग्रस्त रहता है, और राजा का तो एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है, पूरी उसके अक्षेत्र की जनता उसके बच्चे होते हैं, उनकी प्रत्येक वस्तु का उसको की चिंता बनी रहती है, कोई फ्लड आ गया या भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, हाहाकार मच जाती है, तो राजा को चिंता बन जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, उपद्रव हो जा, तो उसकी सौ व्यवस्थाएं करता है, दिन रात नींद नहीं आती है। हमें ऐसा दिखता जैसे ये राजा लोग मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पता नहीं कितने सुखी होंगे, भूल जाओ इन बातों को। अब परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के दिए उस दूरबीन से, चश्मों से हमें दूर का दिखने लग गया, पहले हमने निकट का भी नहीं दिखा था, ठोकर बेसिक लग जाती, तो अब हम ये ठोकर खाएंगे नहीं, हम काल के भरमे भरमाए भरमेंगे नहीं, ये ज्ञान ऐसा दे दिया दाता ने। और इस ज्ञान को समझ कर भी जो डड़े डोए है और इस काल की व्यवस्था में सारा जीवन खोया है, तो वो भगत नहीं, वो तो पत्थर आदमी है। नहीं ज्ञान था तब तक तो हम चलो एक जैसे थे, ज्ञान हो पाचे फिर हम वही काम कर रहे हैं जन साधारण जैसे, तो भगत नाम की को बदनाम कर रहा वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त और नाम को प्राप्त करके फिर वही बकवादने करता है जो संसार करता है, ये नहीं चलेगा। अब जैसे विद्यार्थी स्कूल में आता है और माता पिता ने उसको फ्री छोड़ दिया, बढ़िया आहार देते हैं, बढ़िया ड्रेस बनाते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, और स्कूल जाने वाले क्या करते हैं, जो स्कूल में कॉलेज में विद्यालय में नहीं जाते वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर वृक्षों पर चढ़ रहे होंगे, उतर रहे होंगे, कूद रहे होंगे, या वैसे किसी खेल को खेल रहे होंगे या गद्दों पर बैठ कर बारी घूम रहे होंगे। गांवों में इतने की और सवारी हुआ करती, पहले छोटे छोटे बच्चे उन पर बैठे अंडे जाया करते, तो पढ़ते नहीं थे तो। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका तो वो काम है ही नहीं, और स्कूल वाले बच्चे अपने काम न छोड़कर उनकी रीस करेंगे जो गद्दों पर बैठ कर घूम रहे हैं या वृक्षों पर चढ़ चढ़ कर उतर रहे हैं, फिर भागते फिरते हैं तो मुझे पकड़ में ना ठहरूं। तो ये उस विद्यालय में जाने वाले बच्चों का काम नहीं है, उनका उससे हटकर कार्य है। तो संसार के लोग जो खेल खेल रहे हैं और हम भगत होकर भी उन्हीं खेलों को खेलते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। हम फिर ड्रामा कर रहे हैं, अपने मूल सिद्धांत को भूल रहे हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके या तो नाम लो मत, और लो तो फिर इसमें सफल करो, और तभी इसका कोई फायदा होगा। परमात्मा ने यह मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी ड्रेस न्यारी है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं कि इनको परमात्मा पाने वाले उस विद्यालय में प्रवेश मिल चुका है और यह ड्रेस भी मिल चुकी है। और जो मनुष्य जीवन पाकर अब भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, धर्म कर्म ठीक नहीं करते, तो वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक समय किसी विद्यालय में दो सहपाठी पढ़ा करते थे। एक तो ठीक ठाक से अपने से क्रिया करके पढ़कर और इस B&R के अंदर बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट में एक्सियन लग गया, और दूसरा उसका साथी जो गद्दों पर घूमया करता था विद्यालय में प्रवेश पाकर भी, वो मजदूरी कर रहा था उसी रोड के ऊपर जिस पर उसका साथी इंस्पेक्शन करने आया था। उसके जाने के बाद फिर वो मजदूर कहता है कि ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे भाग फूट गए, मेरी अकल मारी गई, मैं पढ़ा नहीं, ये पढ़कर देखो एक्सीडेंट लग गया, कारों में चलता है, आगे पीछे इसके सब सलूट मार रहे हैं और मैं मजदूरी कर रहा हूं। आज मेरे बच्चे तो रेत में पड़े हैं, इसके बच्चे वहां एसी और कूलरों में मौज कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति नो पछतावेगा जो मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करेगा। और फिर क्या बनेगी जब वो मजदूर लग लेगा, मजदूर मीन गधा कुत्ता सुअर बनकर अपने कर्म ढो रहा होगा, और जो भक्त है वो अपने सतलोक में जाकर ठाठ कर रहा होगा। तो फिर हाथ से मौका छूट जाने के बाद उस पश्चाताप करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगगी खेत। तो परमात्मा ने बताया कि अब संभलो, समय रहते करने का होता सारा कुछ, फिर तो फिर ही होता है, कल तो कल ही होता है और कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज और अब ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में ना जाने के हो जा, फिर करोगे कब। तो जिस दिन ये ज्ञान की छींट आपके लाग जा, उसी दिन से परमात्मा की भक्ति में कति दृढ़ता से लग जाना। संसारिक काम भी करें, निर्वाह करना जरूरी है, और ये भक्ति ही ऐसे होती है। परमात्मा ने आके स्वयं बताया है कि ये साधना बहुत सिंपल है। इस काल भगवान का एक उद्देश्य है, जैसे प्रसंग चल रहा है कि यहां पर दो पावर काम कर रही है। एक तो ये मिसगाइड करता है जिसने हमें यहां रोक कर रखना है, मूर्ख बना रखे है, और कति सरेआम झूठ है कि ये तेरा बेटा, ये आप तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरी संपत्ति, और कल मृत्यु हो जाती है। फिर कहता छोड़ बंधु, तेरा क्या था, चल गदा बन। तो ये विलियन है, ये खलनायक है, हमें इतना मूर्ख बना रहा है, हमारे को विवश कर रखे है। फिर शेष बचे हुए परिवार के लोग टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और उनको ये नहीं पता कल तुम्हारी भी बारी है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा कहते हैं सब काल आहार है, जितने भी यहां हैं, कुछ को तो 1,00,000 को तो प्रतिदिन युग ग्रहण कर लेता है, और कितनी लंबी व्यवस्था बना रखी है, कितनी बड़ी पृथ्वी, कितने इसके ऊपर गांव नगर शहर बने, और कितना सूझबूझ से कर रहा है। किसी गांव में महीने दो महीने में एक आधा बुढ़ा मर जाए, को बालक मर गया, वो भी साल 6-6 महीने तक ऐसे ठीक ठाक भी कोई गांव रह जाता है। तो इसने इतना व्यवस्था बना दी कि इनका बनक भी ना पड़े और तेरा काम भी ठीक चले। और जब शॉर्टेज पड़ जाती है तो भूकंप ला देता है, लाखों की संख्या में कट्ठे मारकर फ्रिज में धर लेता है, कहीं फ्लड आ जाती है। तो पुण्य आत्माओं, इन बातों को घना ध्यान तो सुनो, और ये बातें कैण सुन की नहीं, ये कर पाटन की है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने सोच लिया कि ना जची नहीं बात, और कुछ नहीं कहेंगे ना बस सही, 100 की 100 सच्ची है। लेकिन जिनका या जचगी सच्ची है तो उन्हें दृढ़ता से लग जाना चाहिए, और जो अभी बालक है जिनकी ऐन ही मिट्टी है, वो नू कहना नू कैसे हो गया, नू कैसे होता है, तो उनकी ऐ मिट जाएगी, फिर वह उनको भी यही बातें सारी ठीक लगेंगी। और ये सारी ठीक है, ये सत्य है, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल सकता, और उसी परमात्मा का दिया यो ज्ञान है जो दास आपको सुना रहा, ये अपना नहीं है। तो यहां दो पावर, दो शक्ति काम कर रही है, एक मिसगाइड करके अपने जाल में फंसाए रखना चाहता है, और दूसरा हमारा पिता है, वो हमें यहां से निकालना चाहता है। तो काल ने सब भ्रमणा फैला दी, गलत साधना दे दी, इनकम्प्लीट साधना दे दी, फिर अपने दूतों के द्वारा ज्ञान इतना गलत प्रचार करवा दिया, हद कर दी। पूरी पृथ्वी पर किसी को ज्ञान नहीं, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, या आप जो मेरी शरण में आगे दास की शरण में कबीर भगवान की, उनके अतिरिक्त। तो जुल्म में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इसने, कोई काची नहीं छोड़ रखी, और समर्थ उसे कहते हैं इसके सारे जाल को तोड़कर धर देगा, इसकी पोल खोल दी दाता ने। और अब जैसे यह ज्ञान ग्रहण किया, धीरे धीरे अज्ञान सब में फैल गया, अब यह ज्ञान धीरे धीरे सब समावेगा, और पूरा विश्व भक्ति करेगा, ये भगवान का वचन है, सब सुखी होंगे, और जो इस नाम को लेकर भक्ति करेंगे उनका मोक्ष होगा, सतलोक जाएंगे, ये गारंटीड बात है। और सतलोक में हम तभी जाएंगे जब हम यहां की व्यवस्था से कति परिचित हो जाएंगे, खूब परिचित हो जाएंगे यहां की व्यवस्था से, तब हमारा मन अटेगा। अब यहां क्या है कि जिसका पुत्र नहीं है, वो ने सोचे भगवान पुत्र हो जा, हे भगवान पुत्र हो जा, बिल्कुल संतान नहीं है तो उन्होंने सोचा भगवान पुत्र हो जाए, पुत्री एक संतान हो जाए। और जिनके दो पुत्री होगी फिर उसकी रट लग जाती है, भगवान पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो, तो बात बने। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी बन गई, यदि आदमी अपना दिल संतोष करे तो पड़ोसीकरण देनी, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, एक बालक तो चाहिए था, ये काल प्रेरणा है। फिर उनका मरोड़ी उठे, कह दूसरा ब्याह करवावेगा, कह और 36 पंगे पावेगा, यानी बालक लड़का ना हो ले इतना टके नहीं। अपने आत्मा यहां तो एक संस्कार भोग रहे हो आप, और वही मिलेगा जो आपके पूर्व में संस्कार आपकी किस्मत में लिखे हुए, चाहे कितने सिर पटक लो। एक दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था सिविल की, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वह एक कंट्रैक्टर था, और वो लगभग दास उस समय 30, 35, 36 की उम्र का था, और वो लगभग 55 और 58 की उम्र का व्यक्ति था। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, वहां बैठे थे और कुछ व्यक्ति और बैठा था कोई खेतों में, जैसे किसान, तो वो कह रहा था कि फलाने आपस में बतला रहे थे कि उसका लड़का हो गया, उसके एक लड़की लड़की है। तो वो ठेकेदार कहने लगा, भाई भगवान ने जो लिख रखा है उसने कोई नहीं बदल सकता। मेरे चार लड़की थी, तीन एक चार बताई से, और सारी लड़की ब्याह दी, लड़की ब्याह दी तीनों जवान होगी, और फिर प्रेरणा पैदा कर दी वीरानी केस काल ने के करा मेरी गेल। मेरी पत्नी भी किसी ने कह दिया हुआ, फिर अपनी की तो मौसी की बेटी ने ले आई, मेरे ब्याह करवा दिया, एक पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र तो चाहिए। ने बोला पहली प्रथम डिलीवरी में दो लड़की हुई कठी है वन तो जब ऑपरेशन करवा दिया पांडा छुटवा क्योंकि पार्ट पीछा छुटे। तो भाई इन बातों ने याद रखो तुम। फिर हम उस समर्थ की शरण में आगे यदि आपको आवश्यक होगा तो ये सब कुछ देगा, और नहीं आवश्यक होगा तो इस ज्ञान आधार बना के जी लो और इस परमात्मा के अमृत ज्ञान की गुट्टी पियो तुम, जब बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति को चार पुत्र हुए, और पहले किसान था वो, पहले उसके चार पांच एकड़ जमीन थी, उसने सारी उम्र मेहनत कर करके अपना खर्चा कम करके यानी 15-16 एकड़ जमीन बना दी। परमात्मा की भक्ति का ज्ञान किसी को है ही नहीं, परमात्मा की भक्ति तो हम सोचते नहीं, हम तो इस माया की दौड़ में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बच्चों का विवाह कर दिया, पोता पोती होगी, और खुद को पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया। अब उसके साथ के बनी, अब कुछ दिन तो के बच्चे अलग अलग हो गए, अब कुछ दिन तो बड़े पुत्र ने रखा, दो महीने में पुत्र उसकी पुत्र वधु वो कति थक गई, तुम अब तुम रखो, दूसरों से बोले कि तुम भी तो जमीन बराबर की ले रहे हो, फिर दूसरे को बेच दिया, दो महीने में दूसरा छक लिया, कभी टूक मिले नहीं, कभी नुहावे नहीं, कदे टट्टी माए पड़ी है उसकी, खेतों में चले जाए सामने संभाले, फिर तीसरे का नंबर आ गया, फिर चौथे का। उनकी यह दशा देखकर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भी तुम इसकी संभाल क्यों नहीं करते, या फिर इसके हिस्से की जमीन दे दो, हम कोई नौकर छोड़ दें। लास्ट में छोटे वाले लड़के ने कहा कि भाई मैं संभालूंगा पिताजी को, और इसके हिस्से की जमीन मुझे दे दो। अब ठीक है, अब 6 महीने तो उसने संभाला, फिर हुआ दशा होगी, फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई तने या तो गलती कर दी या तो इसे संभाल। ने बोला यो बाबू भी ले लो, पिताजी भी ले लो, और या जमीन भी ले लो। अब पंचायत हो रही, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और छोटा लड़का वो सब लड़के कह रहे इसने भी ले लो, और वो बुढ़ा कैसा पड़ा पड़ा नुपंगा मुंह रहा, और पोता है गया उसके पास उस छोटे वाले का, उन्होंने उनका आ गया पुत्रां तक काट दी टाटी, पोता करेगा तेरे गहरे, ये पोता करेगा तेरी चोटी में मल्ले से। तो जो काम करने का था वो तो ना करे, चल ठीक है संपत्ति भी बना ली, पर इसके साथ साथ एक जरूरी काम था वो ना करने से अब कितना दुख हो गया। फिर बात रही दूसरी, मान लीजिए कोई संस्कारवश अच्छी पुण्यात्मा भी पुत्र पुत्री होते, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक मोटा उदाहरण है, और 90% यू फिट है ये समझ लेना, 90%, बाकी रही 10% अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी बेटा बेटियां भी पुत्र वधु अच्छी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्ति ना करने से उसके जो कर्म बिगड़ गए, और प्रारब्ध यानी किस्मत के अंदर कोई मान ले ऐसा दोष कैंसर बन गया उसका रोग, अब वो बच्चे अच्छे भी हैं, पुत्र वधु भी खूब सेवा कर रही है उस व्यक्ति की, लेकिन जो उस कैंसर का जो दर्द है पीड़ा है जो चीज है वो तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, वो बेटा बेटी नहीं बटा सकते, वो तो रो सकते हैं बैठ के। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है।